ओम शांति। अनाउंसमेंट सुना कि टॉपिक है अव्यक्त पालना का आधार अव्यक्त स्थिति। देखो आज तक भी अव्यक्त बाप दादा कैसे बच्चों की पालना करता है। एक सिंपल तरीके से देख लो आप, दुनिया में भी बहुत साधु संत धर्म गुरु देवताएं, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, अभी देखो पुटपत्रे का सत्य साई बाबा था, स्वामी नारायण का प्रमुख स्वामी ने शरीर छोड़ा, वो सब कहां गए? उनके जो फॉलोअर्स है उनकी पालना कौन करेगा? जब तक वो थे तो उन्होंने किया, बुद्धिस्ट का गुरु बुद्ध आ गया, महावीर स्वामी आ गए, गुरु नानक देव जी आए, कितने धर्म की स्थापना किया, देवताएं आए, अभी लेटेस्ट पुटपत्रिका सत्य साई बाबा था। तो शरीर छोड़ने के बाद वो आत्माएं कहां गई? उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी पालना कौन करेगा? ये प्रश्न आएगा ना। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी ब्रह्मा बाबा थे, उनके तन में निराकार शिव बाबा आके ज्ञान सुनाते थे, तब हम और आप सभी बाप दादा कहते थे, तो वो ज्ञान सुनाते थे। कल ही मुझे एक भाई मिला, साकार में ब्रह्मा बाबा को देखा और 18 साल का था, छोटा बच्चा था, बहुत पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं, दिल्ली में ज्ञान सुना, बाबा से यहां मिलने आया और बाबा खेती में कुछ काम कर रहे थे, काम करते फावड़ा भी हाथ में है, धोती पहने, सिर्फ पहचान भी नहीं थी उनको यही बाबा है, तो आ रहे थे, आते आते समझ में आया, कहा था कि बाबा धोती पहनता है, सफेद मूछ है, तो दूर से आ रहे थे, देखा तो एकदम पाव पड़ने गए, तो बाबा ने तुरंत उठाया, पाव पड़ने नहीं दिया, आधे से उठाया, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, तो कभी कहते मैं बोलता नहीं था, उस दिन मुझे विचार आया बाबा सिकिलदे कौन है, तो बाबा ने खड़े खड़े वहां अर्थ बताया, सिकिलदे का अर्थ क्या है। उसके बाद हिस्ट्री हॉल में बाबा आए, टीचर ने उनको सबसे आगे बिठाया था, तो पहले बाबा को देख रहे थे, देखते देखते जब मुरली शुरू हो गई तो बाबा का रूप रंग सब चेंज हो गया, तब पता चला कि निराकार शिव बाबा उनके द्वारा कैसे ज्ञान सुनाता है। एक हमने सुना है, वो भाई इधर ही होंगे, आई विटनेस, प्रूफ चाहिए, मनुष्य प्रूफ चाहता है, कि एक राजा था, किसने देखा, एक कहानी हो जाती, कहानी सुनने तक अच्छा है लेकिन वो आचरण में नहीं आती है। वो भाई आज इधर ही होगा, तो उन्होंने अपने अनुभव कल ही सुनाया, जीवित चाहिए, कैसे हम कहते बाबा था, बाबा को देखते आकर्षण होता था, जैसे हम देवताओं का एग्जाम्पल देते हैं, तो ये ब्रह्मा बाबा तो कैसे था, कौन आके पढ़ाता था, निराकार शिव बाबा आके कैसे ज्ञान सुनाता था, दोनों में अंतर देखा उसने। तो ऐसे ही यहां भी अगर अव्यक्त बाप दादा का अनुभव करना चाहते हो तो अव्यक्त स्थिति छे, एक नहीं हजारों प्रूफ्स है, उदाहरण है, प्रैक्टिकल, एक है जीवित, आप वेरीफाई कर सकते हो। क्यों? आज की दुनिया में मनुष्य साइंस पर 100% विश्वास रखता है, गलत नहीं है, साइंस ने हर चीज करके दिखाया। अभी आप कहेंगे यहां से मनसा सेवा करो तो आपके संकल्प वहां पहुंचते क्या प्रूफ? अगर आपके बाजू में कोई योग करने बैठा उसको नींद आ रही है, आप उसको उठा सकते हो? तो आपके संकल्प शक्ति कहां काम करती है? साइंस ने करके दिखाया। यहां अगर आप बात करो, यहां से 7 समुद्र पार कर दुनिया उस कोने में लाखों लोग हैं, उसी व्यक्ति को यह संकल्प पहुंचता है, तो यह साइंस का चमत्कार नहीं है, साइंस का अर्थ है। ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो वही स्पिरिचुअल साइंस में भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी एक प्योर स्पिरिचुअल साइंस है। दो शक्तियां ब्रह्मांड के अंदर, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। मेटाफिजिकल एनर्जी आत्मा, आत्मा क्या है, उसके पास भी तीन शक्तियां हैं। आत्मा शरीर में आते ही विचार शुरू हो गया, उसके बाद एक शक्ति है बुद्धि, ये विचार अच्छा है ये विचार गलत है। मन और बुद्धि दोनों मिलती है एकाग्रता का, ये एकाग्रता से आप अंदर जो संस्कार भरे हुए उसको मिटा सकते हो। वही वहां भी ऐसी एटॉमिक बम कहा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं तो बम ब्लास्ट कर सकते हैं, अंदर जो भरा सब कुछ विनाश कर सकते हैं। गुण धर्म वो शक्ति दोनों है, प्रकृति के अंदर प्रकृति की शक्ति है एटॉमिक एनर्जी का, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो इसको भी बाबा कहते हैं। आज मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञान सुनना कोई याद नहीं है, इससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। हम रोज ज्ञान सुनते हैं, कभी किसी किसी के मन में आएगा हम रोज मुरली सुनते हैं, पूरे श्रीमत पर चलते हैं, ये बीमारी क्यों, ये विघन क्यों? तो बाबा ने कहा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों में देता हूं, ऊपर से दवाई नहीं भेजेगा, ऊपर से धन नहीं देगा, विधि बताता है। इसलिए उसका नाम है भाग्य विधाता है, हर कर्म करने की विधि बताता है। तो बाबा ने कहा अव्यक्त बाप दादा की पालना चाहते हो, साकार में बाबा ने किया। एक एक बच्चों की पालना किया, बहुत प्रकार के उसकी वर्णन है, आप दो दिन से सुनते भी आए, आज अभी सुनना अव्यक्त पालना कैसे करता था। आज भी वर्तमान, आज भी बाबा बच्चों की पालना करता है। तब बाबा ने कहा बच्चों के साथ मैं अंत तक हूं। तो कैसे करता है मैं आपको दो चार प्रूफ बताता हूं, जीवित कहानी नहीं। तो कभी कभी किसी के मन में साइंस पर विश्वास है तो आध्यात्मिक ज्ञान पर विश्वास नहीं होता है। अरे सब लोग बोलते हैं किसने किया, कौन है, नहीं प्रूफ है, आप वेरीफाई करके देख सकते हो। जैसे साइंस ने कहा 2% हाइड्रोजन ले लो, 1% ऑक्सीजन ले लो, देख लो क्या बनता है, दूध बनता है कि पानी बनता है, कुछ करना पड़ता है। बिना केवे अपने आप नहीं बता सकते हो कि दूध बनेगा कि पानी बनेगा। तो ये सुना हुआ ज्ञान है, आपने करके देखना चाहिए। इसलिए कहते हैं एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी है, अनुभव एक शक्ति है, वो सारे विश्व के सामने चैलेंज कर सकता है। अनुभव चाहिए, नहीं तो कहते पोपट ज्ञान, इधर पढ़ा और इधर सुना। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं ऑल पोएट्स आर हैविंग देयर हैंड्स, सभी जो किताब लिखते हैं, पोएट्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उनके हाथ कहां है, दूसरों के जेब में है। उससे इधर से निकाला, इधर से निकाला, अपनी कविता बना दिया। ऑल पोएट्स आर हैविंग देयर हैंड्स इन अदर पॉकेट्स। तो वो यहां नहीं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो बाबा ने कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। सिर्फ पढ़ने से नहीं, हम रोज 10 दफा मुरली पढ़ते हैं, शाम तक पूछो क्या सुना था। तो ये पढ़ाई नहीं, पढ़ाई की विधि है, हर कर्म करने की विधि। शिव बाबा ने आके विधि सुनाया तब नवाब बनेंगे। तो यहां प्रश्न आता है कि अव्यक्त पालना बाबा कैसे करता है। तो उसकी, उसको प्राप्त करने के लिए अव्यक्त स्थिति चाहिए, क्योंकि दुनिया में दो डॉक्टर हैं। तो अव्यक्त पालना का आधार अव्यक्त स्थिति चाहिए। अगर देख लो कोई बात करता है तो उसको समझने वाला भी चाहिए। तो बाबा की भाषा, बाबा के वाइब्रेशंस कैच करने के लिए अव्यक्त स्थिति चाहिए। एक है व्यक्त, हम शरीर के भान में रहते हैं, हर सेकंड शरीर की स्मृति में है, शरीर में रहते हैं। सत्युग से, जब से परमधाम से आए तब से आज तक शरीर में रहते हैं, शरीर के द्वारा कर्म करते हैं। आत्मा तो किसी को दिखाई नहीं देता है, शरीर ही दिखाई देता है। तो आत्मिक स्मृति में स्थित आत्मा को देखो, ये संभव नहीं हो रहा है, बहुत कठिन लगता है। तो कम से कम जब अमृत वेले शाम को योग में बैठते हो, बाबा को याद करने बैठते हो, तब कम से कम उस समय हम अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं, और वो भी सहज तरीका है। तब बाबा के जो वाइब्रेशंस है, जैसे देख लो आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी है, मोबाइल का नंबर एक्यूरेट डायल करते हो तो यहां से वहां तक क्या गया, मोबाइल यहां ही है, नंबर आपने यहां किया तो क्या गया, वाइब्रेशंस जाते हैं यहां से वहां तक जाते हैं, और जहां पहुंचता है वहां ही पहुंचता है, दूसरी जगह नहीं। ऐसे ही बाबा ने भी विधि बताया, रोज बताया, आज भी बताया, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा के वाइब्रेशंस परमात्मा के पास जाते हैं। अगर शरीर का भान है तो शरीर के वाइब्रेशंस हॉरिजॉन्टल जाते हैं। तो ये एक नियम है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग है, नति स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो शिव बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखा रहे हैं, तो वो विधि जानना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य है, डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं, ऐसे अपने आप नहीं जाते, दर्शन करने नहीं जाते, कुछ सुनने नहीं जाते, दर्द मिटाने के लिए जाते हैं। नहीं तो डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता है, दर्द सहन नहीं कर सकते, जो सहन कर सकता है वो नहीं जाता है, जो नहीं कर सकता है। यहां भी शिव बाबा ने कहा, सारे कल्प के अंदर बहुत कुछ है, सिर्फ संगम पर मेरा एक ही धर्म और कर्म है, क्या है वो, मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं और कुछ देने नहीं आया हूं, मेरे पास और कुछ नहीं, एक ही काम है, पतित आत्मा को। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है, आज भी भारत गरीब नहीं है, आज भी भारत में सोना हीरा मोती बहुत भरे हुए हैं, लेकिन एक व्यवस्था है, पतित आत्मा इस सृष्टि की जो संपत्ति है उसका उपभोग नहीं कर सकती है, सुख ले नहीं सकती है, पवित्र आत्मा ही इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग कर सकती है, सुख ले सकती है। तो बाबा हीरा महल कुछ नहीं देता है, सिर्फ पतित आत्मा को पावन करता है, वो विधि बताता है, बच्चे पाप मिटाओ, सारी संपत्ति आपके चरणों में है, उसको हमने स्वर्ग कहा, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, तन को भी कोई भी बीमारी नहीं। आज ही बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे बाप के याद से आयु बढ़ा सकते हो, जितना पाप उतना जन्म ज्यादा, जन्म लेना मीन्स पाप भोगना, पाप कम जन्म कम, जितने जन्म लेते हैं हम, इसलिए सत्ययुग में देखो कितने जन्म, कलयुग में देख लो, क्यों, अंदर पाप है, जनन मरण ये पाप को भोगने का एक तरीका है। बीमारी, बच्चा जन्मते ही लंगड़ा अंधा काला गोरा गरीब कौन करता है, मैंने किए हुए कर्म, बताओ मेरे कर्म कहां है, डॉक्टर के पास जाओ, अगर आपको मुझे कोई बीमारी नहीं, तुरंत दिखाता है शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। तो यहां भी हम अपने आप को जानना चाहिए, मैं कौन सी आत्मा हूं। जब आप रात को सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आते हैं, तब बाबा ने कहा, आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा, उसका नाम है कर्मातीत आत्मा, उसका नाम है फरिश्ता। फरिश्ता कौन बना, ब्रह्मा बाबा भी फरिश्ता कैसे बने, कैसे अपने आप को चेकिंग करते थे, तो पांच विकारों से मुक्त फरिश्ता कर्मातीत। तब तक अगर अंश भी पाप का रह गया, सत्य का टिकट मिलेगा, अंश का क्रोध का, कभी कभी गुस्सा करता है, सत्ययुग में जा सकते हैं। तो बाबा का एक ही कंडीशन, बच्चे इन सब को मिटाने के लिए मैं आया हूं, तो वो स्थिति चाहिए, वो पहले चाहिए अव्यक्त स्थिति, कम से कम बैठे हुए, सारा दिन छोड़ दो बाद में देखा जाएगा। जब आप योग में बैठते हो, मन और बुद्धि ये दो शक्तियां हैं, नहीं तो व्यर्थ विकल्प माया आती है। कहां से आती है? कहीं से नहीं आती, बुद्धि खाली है। हमारे अंदर एक आदत बने भक्ति से, भक्ति में भी राम 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 करते जाएंगे, बुद्धि भटकती है। अभी यहां भी आत्मचिंतन करते हैं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, बाबा आप प्यार के सागर, अरे आज सब मार्केट से सब्जी ले जाने आए, ये कौन बोल रहा है, आज इसको फोन करना चाहिए। बुद्धि दो व्यक्ति है, दो शक्तियां है, ये एक विशेष ज्ञान है। तब माताएं मंदिर में जाते, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो, नहीं बुद्धि का ज्ञान नहीं था। शिव बाबा ने आके बुद्धि का ज्ञान, तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र दिया। गीता में भी कहा है, अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य नेत्र दे देता हूं, उससे आप देख सकते हो, अर्थात पाप मिटाता हूं। बुद्धि स्वच्छ दिव्यता, वो नेत्र, उसका ज्ञान ही नहीं था दुनिया में। तो शिव बाबा ने आके ज्ञान दिया, दो है, एक मन भी सोचता है, एक बुद्धि भी सोचती है, इन दोनों को एक करो, पांच मिनट करो, दस मिनट करो। भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है, छोटी अंगुली को लगनी चाहिए विधि पूर्वक। यहां भी इतना सहज है, अव्यक्त स्थिति माने एक एक घंटा योग में बैठना अव्यक्त स्थिति नहीं, और इधर उधर के विचार करते रहो, पहले पांच मिनट शरीरधारियों के विचार नहीं आएगा। कैसे? आत्मा का चिंतन करो। कैसे करे? मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि ने जवाब देना चाहिए, बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तो ज्ञान का उपयोग ही योग है। यहां ज्ञान छोड़कर योग करते उसको ध्यान कहा। बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे ध्यान में जाना नहीं, माया प्रवेश कर सकती है, ये हमारा राजयोग नहीं। जो 7 डेज का कोर्स किया, ज्ञान सुना हुआ है, वो किसको याद है? सुना वहां का वहां छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं, वो योग लगा नहीं सकता। जिसने अच्छी तरह से 7 दिन का कोर्स किया, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र, ये सारा ज्ञान सुना हुआ है, जिसको याद है बुद्धि के अंदर, ज्ञान ही तो आत्मा का, तो यो जब बैठता है उस ज्ञान का उपयोग करो। बैठते पहले शुरू में अपने आप से पूछो, आत्मचिंतन करो, मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है हाँ मैं आत्मा हूं। फिर इतना ही नहीं, आत्मा क्या है? आत्मा के पास ये मन है, चेकिंग करो, ये मन किसका विचार कर रहा है, क्यों इनके लिए उनके लिए सोच रहा है, समझाओ। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि यहां बैठे बैठे, आप कहते हो मेरा किसी से लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं है, यहां बैठे बैठे माताओं को याद आता है 12 बज गए, बच्चों ने खाया कि नहीं है, नहीं खाना खाया, यहां से भेज सकते हो, आप यहां आए हो, बच्चे घर में है, तो यहां बैठे बैठे मां को याद आएगा, डॉक्टर को, पेशेंट याद आएगा। किसकी जिम्मेवारी? मां की जिम्मेवारी है बच्चों की संभाल करना, गलत नहीं है। अगर अपने को मां समझते हो तो बच्चे याद आना नेचुरल है। डॉक्टर है, उनको पेशेंट की याद आना चाहिए, पेशेंट को कल ये दवाई दी थी, आज ये दवाई देना चाहिए, ये उसकी जिम्मेवारी है। तब बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, न मां न बेटा न भाई न डॉक्टर, या आत्मिक स्मृति चाहिए। तो अपने आप से पूछो, नहीं तो मेरे मन में बटा हुआ है, मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, ये याद है। तो कम से कम जब योग में बैठते हो अपनी स्मृति को जागृत करो कि मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। फिर मेरा रूप क्या है? एक सफेद चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, ऐसा करके देखो, नहीं दिखाई नहीं देगा, यहां अंदर है, क्योंकि टीवी में दिखाते हैं तो अरे आत्मा का दिखा चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, नहीं देखने वाले नहीं, महसूस, मैं आत्मा एक सफेद चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच में बैठा हूं। मेरे 7 गुण है, कभी कभी हम रिपीट करते हैं, मैं शांत स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हो थे, जब परम धाम से उतरे तब हम शांत पवित्र स्वरूप थे, अब कल मुझे परम धाम जाना है तो अब फिर से पवित्र स्वरूप बनना है, शांत स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है, थे वो याद दिलाओ, हम थे अब मुझे बनना है, उसके लिए कुछ करना है। चौथा, मेरे कर्म, मैं इस भ्रकुटी में बैठकर आंखों से देखता हूं, नहीं तो कहते इंग्लिश में रिलैक्स, डिटैच हो जाओ। कैसे डिटैच हो जाओ? तो शरीर में बैठे हुए इन आंखों से इधर उधर नहीं देखो, 5-10 मिनट इंद्रियों जीत ये करना पड़ेगा। अपने आप इंद्रिय जीत नहीं होंगे, सिखाना पड़ेगा कि नहीं 10 मिनट पड़े कुछ भी होने दो, मैं इस आंखों को हिलाऊंगा नहीं, इधर उधर देखना नहीं, इंद्रियों पर देखो, एक एक को प्रयोग करके देख लो। क्या 10 मिनट 5 मिनट आंखों को हिलाने, कोई आएगा जाएगा कुछ गिरेगा भी तो भी आंखों को हिलाना यूज नहीं करना है, मुख से बोलना नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं। तब कहा बाबा ने बच्चे अशरीरी बनो, शरीर के इंद्रियों को यूज करना आदत बनी है। ऐसे बैठते कब पता नहीं चलेगा आपको कब दृष्टि इधर गई, कब इधर देखते हो। तो स्थित प्रज्ञ का स्थिर 5 मिनट करो, एक घंटा नहीं चाहिए। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट, फटाफट नहीं, ये धीरे धीरे एक एक इंद्रियों पर अधिकार करो। नहीं बोलना है, आज बाबा ने मुरली में कहा कि गलत शब्द बोलने के बदली न बोलना अच्छा है, ये अपने वाणी पर कंट्रोल, एक एक को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम रोज मुरली सुनते हैं तो अपने आप हो जाएगा, ये ऐसा चमत्कार नहीं, अभ्यास विधि। तो बैठ करके अपने आप को दिखाओ कि 10 मिनट मुझे आंखें हिलाना नहीं, एक जगह, आंखें बंद भी नहीं करना। सोते हो तो आंखें बंद करते हैं, अब हम सोते नहीं, खटिया पर बैठे हैं, नहीं कुर्सी पर बैठे हैं, तो एक जगह देखते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बड़े चित्र रखो, आराम से देखते बैठो, आत्मचिंतन करो, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस, अपने को जागृत करो। हर सेकंड मैं मन शरीर के भान में हूं कि मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर, मैं कहां से आया। ये 5 प्रश्नों का अगर आप 5-10 मिनट चिंतन करते हो, इसका रिजल्ट है अव्यक्तिति, व्यक्त दे देधारी शरीर धारी कोई विचार नहीं आया, पाव दर्द हो रहा है कोई भी शरीर की याद ही नहीं है, न नींद है, न व्यर्थ विचार है, न विकल्प है। क्यों? मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है, नहीं तो बुद्धि को याद है अरे आज उसको फोन करना था, प्यास लगी है, पानी चाहिए, ये किसको, बुद्धि को पता है। ये सारे शरीर के इंद्रियों को बुद्धि कंट्रोल करती है। कौन चलाते शरीर को? देखो रात को आप सोए हो, आंखें बंद है, मच्छर काटता है तुरंत हाथ उठक मारता है, बुद्धि जागती ज्योत है। इसलिए किसी ने शरीर छोड़ने के बाद भी दीपक जला के रखते हैं, आत्मा जागती ज्योत है, मन सोता है, मन शांत हो जाता है तो नींद आई, मन शांत नहीं नींद नहीं आती है, तो बुद्धि जागती ज्योत। तब बाबा ने कहा बुद्धि को जागृत करो, तो उससे बात करते रहो। अगर मैं भाई जी को देखते बात कर रहा हूं, वो इधर उधर देख नहीं सकते, कभी भी मैं कुछ पूछ सकता हूं, तो अपने आप से बात करो इन दोनों को एक रखने के लिए, नहीं तो ये दोनों शक्तियां सदा विरुद्ध दिशा में जाती है। तब हम कहते योग लगता नहीं है, व्यर्थ विचार आते हैं, माया आती है, योग अपने आप नहीं लगता है, मोबाइल अपने आप नहीं लगता है, मोबाइल का नंबर याद रखना पड़ता है, अगर एक नंबर भी गलत हुआ तो आपका आवाज वहां नहीं जाएगा। जैसे मोबाइल का नंबर याद रखना जरूरी है, तो शुभ बाबा का नंबर भी याद रखना जरूरी है। अगर बाबा से योग लगाना चाहते हो, बाबा से बात करना चाहते हो, तो उसके नंबर याद रखना, उसका नंबर का अलग अलग भाषा है, अव्यक्तिति, विदेही, आत्म अभिमानी, आत्मिक स्वरूप में रहो, शरीर शरीर धारियों के विचार नहीं आना चाहिए, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये मैं बोलता रहूं तो खा नहीं सकता हूं। टू थिंग्स कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, या बोलते रहो या खाते रहो। तो मैं बोल रहा हूं तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देने में बिजी है, और इसके अंदर एक व्यवस्था ऐसी है, बहुत व्यवस्थाएं है, ये 5 प्रश्न ऐसे नहीं है, ये 5 घंटे का एक्सप्लेनेशन है। कभी कभी कहते हैं मन को शांत कैसे करें, मन के सोचने की जो विधि है स्पीड उसको कैसे रिड्यूस करो, ये मैकेनिज्म है। जैसे आपने प्रश्न किया मैं कौन, बुद्धि जवाब देती, तब तक मन शांत हो गया, मन का जो सोचने की गति है वो अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि मन ने प्रश्न किया, जवाब सुनने के लिए उसको चुप रहना पड़ेगा, अब नेचुरल मन की जो गति है वो स्लो हो जाती है। नहीं तो मन को तूफान है ये, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो शिव बाबा आके ऐसी विधि बताता है नेचुरल। तो जब भी योग करने बैठे हो अपनी ही अवस्था बनाओ, देहधारी का पांच पहले निर्णय करो, पांच मिनट आधा घंटा मुझे योग में बैठा, अंदर घुसते समय प्लान करके आओ मुझे कितना मिनट बैठना है। जैसे चप्पल बाहर छोड़ के आते हो कि ये साधना का सभा है, ये ऐसे इधर उधर कथा सुनने का नहीं, सत्संग नहीं। जैसे स्कूल में एक पीरियड है 45 मिनट, एक भी स्टूडेंट हिल नहीं सकता है, पीरियड के बाद ही बाहर जाना है। अब ये हमारा इतना सहज है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो देखने वाले देखेंगे ये यूनिवर्सिटी है कि और कुछ है। तो बाबा कहते मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे लिखेंगे। तो एक कोई सिंपल डिसिप्लिन है, अंदर दरवाजे से घुसते हो सेंटर में, यहां भी सोच के आओ कहां जा रहे हो, डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए जाते हो, यहां कहां जा रहे हम, मुझे आधा घंटा बैठना है, 15 मिनट बैठना है, 5 मिनट बैठना है, देख के जाना का क्लास अच्छा है, मुरली अच्छी है तो बैठेंगे नहीं तो जाएंगे। सोच के अंदर आओ, क्योंकि एक आता है दूसरा जाता है तो सबका अटेंशन डाइवर्ट होता है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई है ये सब, एक दैवी गुण कहते हैं, मर्यादा कहते हैं, एक डिसिप्लिन से। ये भी जरूरी, क्योंकि अभी नए कोई नहीं है, सब बाबा के बच्चे हैं, नए शिविर वाले हैं, उनको पता नहीं आए चले गए है ना। तो बाबा के बच्चों के अंदर सेंटर में भी ये व्यवस्था, एक बार घुसे पूरी मुरली तक पहले सोच के आओ मुझे आधा घंटा सुनना है, कोई अर्जा नहीं, हर एक का सभी एक जैसे नहीं हो सकता है। तो अपनी मर्यादा लेके आओ बैठो, तो इस समय इसका चिंतन करो तो आप अव्यक्त स्थिति में देखो बाबा का आवाज कैसे बाबा आपको पढ़ाता है। आपको प्रैक्टिकल उदाहरण बताओ जीवित, देखो अब भी 2-3 साल पहले एक भाई 50 साल से सेंटर में रहता था और उनकी एक लड़की सेंटर संभालती है, आज भी 2 बच्चे थे बड़े लड़के, दोनों को शादी किया दिया करके दिया था, पिताजी को पैरालिसिस हुआ तो यहां थे। तो बड़े बेटे को, बड़ा बेटा रिटायर्ड हुआ तो बड़े बेटे को लगा पिताजी की सेवा करना चाहिए, तो आए तीनों, दोनों भाई दोनों एक बहन, और दादी को कहा दादी पिताजी की सेवा करना चाहते हैं। दादी ने कहा तुम्हारा पिताजी ले जाओ, लेकिन बहन को लगा बाबा आपने 50 साल से ब्रह्मा भोजन खिलाया, ज्ञान सुनाया, और आप वो बहू क्या खिलाएंगी, लेकिन मैं सेंटर में ले जाती हूं बोल नहीं सकती है, चुप रही। तीनों यहां से मधुबन में गए, बाबा के कमरे में बैठे, बहन ने बाबा को कहा बाबा ये मेरा पिताजी तो नहीं, मेरा तो आप है, लेकिन इस पिताजी को आपने 50 साल से ब्रह्मा भोजन खिलाया, खाना खिलाया, योग सेवा कराया, और आज उनको आप बहू के पास भेज रहे हो, मुझे ठीक नहीं, ले निर्णय ठीक नहीं है। इतना बोल के आई, उनको भी इतना भी विश्वास भी नहीं था कि बाबा सुनता है, बाबा के कमरे में बोलना है, बात करना है। आई यहां आने के बाद गुलजार दादी के तन में बाबा आता है, तो तीनों ही बहन दोनों भाई दृष्टि लेके पिताजी को भी लेके जा रहे थे, तीनों नीचे उतरे, बहन ऊपर ही बैठ गई, लास्ट था। और बाबा जाते जाते बाबा ने बुलाया, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है, वो सवेरे ऐसे बोल के आई थी कुछ विश्वास भी नहीं, तो क्या निर्णय, 1-2 घंटे तक याद ही नहीं रहा क्या निर्णय बाबा ने कहा, फिर याद आया हाँ सवेरे बाबा के कमरे में मधुबन में मैं बोल के आई थी बाबा ये निर्णय ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा निर्णय ठीक है, भाई तो लेके गया, 1 साल भाई ने पिताजी की सेवा किया, भाई शरीर छोड़ के चला गया क्योंकि उसकी भी इच्छा थी, बाबा देखो दोनों का संभालता है, भाई की इच्छा थी ले जाओ, बाबा जानता है जानी जाना ना आ रहे। और 1 साल के बाद भाई ने शरीर छोड़ा, बहन अपने घर से अपने सेंटर में लेके गई, आज भी पिताजी 2 साल पहले मैंने देखा था 99 ईयर्स थे, अभी 101 ईयर्स होगा, आज भी जीवित है। और बहन सेंटर में रख करके सेवा करती है, बाबा दोनों का सुनता है। तो किसने सुना? सोचना, बाबा के कमरे में कौन था? बाबा का फोटो है, कौन सुनता है? किसने जवाब दिया? तब कहा, आपको शुरू में सुना था कि इतने धर्मगुरु, इतने सब संत गए, कहां गए हो? ब्रह्मा बाबा ने भी शरीर छोड़ा, कहां गया? जन्म लिया, परमधाम गया, कहां गया? सूक्ष्म तन में। क्या प्रूफ? हर साल अपना तन नहीं है, गुलजार दूसरे तन में आकर, गुलजार दादी के द्वारा आकर 50 साल से, एक दो साल नहीं, एक दो साल कोई आएगा, 50 सालों से जो 80 साल पहले ज्ञान सुनाया था शुरू में, वही ज्ञान आज 50 साल से सुना रहा है। कौन? दूसरा कोई आत्मा आई और बाबा बताता है ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, साकार की बताता है बाबा। तो कौन सी आत्मा? वही आत्मा और वही बाबा, दोनों बाप दादा, दोनों गुलजार दादी के द्वारा आज तक भी सेवा कर रहे। तब कहते हैं भगवान पालना करता है, जन्म देके छोड़ता नहीं। तब भगवान को कहते हैं त्वमेव माता श पिता, त्वे मां बाप हो। बाकी सब गुरु आया, ज्ञान सुनाया, चला गया, तो भगवान बच्चों की पालना करता है, आज भी करता है। अभी भी लेटेस्ट सुनाता आपको, और भी देखो, एक बहन एक दिन आई तो कहने लगी, भाई जी बाबा ने सबको बड़े बड़े सेंटर दिया, हमको तो छोटा सा सेंटर है, कुछ सेंटर बना के नहीं दिया, कोई नहीं है। तो यहां से गई, तुरंत एक महीने के अंदर एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा, बहन जी एक सेंटर मकान बनाया उन्होंने, नया न्यू बना बनावा सेंटर दिया ये डॉक्टर ने बना करके। बहन जी ने कहा भी, अभी ताली नहीं बजाओ, अभी बाद में सुनना। तो बहन जी ने फोन करके बताया, भाई जी बाबा ने नया सेंटर बना के दिया। बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों सेंटर देखने गए, पाव रखते ही बहन जी के मन में विचार आया, कैसे बाबा पालना करता है, तो ये सेंटर नहीं लेना चाहिए, ये मकान बाबा की सेवा के लिए योग्य नहीं है। तुरंत फोन करके बताया। हमने कहा, बहन जी दिमाग ठीक है? बड़ी बहन जी है वो कुछ नहीं बोल रही है, छोटी बहन कहती, भाई जी ये बाबा की सेवा के लिए योग्य नहीं, ले नहीं लेना। नहीं लिया उन्होंने, कहते पाव रखते ही विचार आया ये बाबा की सेवा के लिए नहीं, नहीं लिया, न्यू बना हुआ, अभी किसी यूज भी नहीं किया, वापस आए, लिया नहीं। दो महीने के अंदर एक कोई साधारण व्यक्ति साइकिल पर आया, बहन जी ये 9 लाख रुपया ले लो, आप जमीन ले लो, सेंटर बनाओ। अभी कह रहे थे 18 जनवरी को ओपनिंग करूंगी, तो 2 मंजिल का सेंटर बनाया। भगवान किसका लेता है, किसका नहीं लेता है? कोई राजा खा के गया, कोई चोर लुट के गया, किसी का ही सफल होता है। तो किसने बताया उनको? बाबा, आज भी ऊपर से। तब बाबा ने व्यवस्था दिया, बच्चे खाना भी लेते हो, दृष्टि ले लो, देख लो, याद करो बाबा, बाबा ये खाऊ, आप खिला रहे हो, बाबा ये आपकी सेवा के लिए मकान, बाबा अच्छी कहता, नहीं बच्चे ये मेरी सेवा के लिए योग्य नहीं, नहीं ले लो। आज भी बाबा बच्चों की पालना करता है। तब कहते हैं दुनिया में भगवान करण करावनहार है, वो कर रहा है। लेकिन ये कब होगा? कब टचिंग? ऐसे टचिंग नहीं, अपने आप टचिंग नहीं होता है। जैसे रामायण में आता है, एक दफा राम वनवास में अकेला हो जाता है, लक्ष्मण भी गया, सीता भी गई, लक्ष्मण उनको ढूंढने गया, आवाज आया, तो पंचवटी में राम अकेला हो जाता है, तो खर भूषण ये दोनों राक्षस उनके ऊपर हावी हो जाता है, तो सारे अस्त्र राम के खत्म हो जाते हैं। तो क्या करो? एक प्रश्न आया तुरंत, क्या करो अभी? तब आकाशवाणी होती, हे राम तुम्हारे पास ये अस्त्र है, ये छोड़ो। वो छोड़ते सब मूर्छित हो गए। तो बाबा ये रामायण में कहानियां है, लिखा हुआ है, ये यहां व्यक्तिगत अगर आप संसार में चलते हो, अव्यक्त स्थिति है, मैं आत्मा उस दिलाराम का बच्चा हूं, उस स्मृति में रहते हो, मैं कौन हूं, तो बाबा टचिंग देता है। अगर हम शरीर के भान में रहते हैं वो कैच नहीं कर सकते हैं। तो बाबा एक नहीं, 1000 उदाहरण है प्रैक्टिकल लिविंग, आज भी वो लोग जीवित है, आप वेरीफाई कर सकते हो ये सही है कि नहीं है, कि नहीं तो कोई ऐसे सुना के जाता है। ये सुनने की कहानी नहीं, आपको आचरण में लाने के लिए, क्योंकि अव्यक्त स्थिति आए। हम मधुबन में 18 जनवरी मनाने के लिए क्यों आए? सेंटर में भी कर सकते हो, घर में भी योग कर सकते हो, तो संगठित रूप में ये वातावरण है। ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ कर अपने अव्यक्त स्थिति बनाया, अपने आप शिव बाबा ने नहीं बनाया, अपने आप नहीं बने, चमत्कार नहीं किया, पुरुषार्थ किया। तो हमें भी अगर कुछ पाना चाहते हो, कुछ अभ्यास चाहिए, कि इस सृष्टि पर नियम है कि जब तक खेती में एक बीज नहीं बोया तो 50-100 दाना लगते नहीं है। न साइंस ने न भगवान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाया, बिना बोए हुए कुछ उग जाए, कुछ बोना नहीं, भोला नाथ जो चाहे कर सकता है, ऐसा नहीं, चमत्कार नहीं, विधि से सिद्धि। जब भी आप अमृत वेले शाम को योग में बैठते हो, अपनी स्मृति को जागृत करो, मैं कौन, उसको बाबा ने कहा साधारण भाषा में आत्मा समझ, मुझे याद करो, मैं कौन, उसके साथ बुद्धि योग जोड़ो, तो वो शक्ति आत्मा के अंदर जो पाप है उसको मिटाते। तब बाबा ने कहा मैं कौन, पतित आत्मा को पावन करता हूं, आई एम द प्यूरिफायर, आई एम द लिबरेटर। वो कौन है? ही इज ए प्यूरिफायर, पतित को पावन करने आया, कुछ सोना हीरा और कुछ देने नहीं आया। वो आपके कर्मों का फल मिलेगा, कर्मों की गति है। तो इसलिए अव्यक्त स्थिति चाहिए। तो कैसे बाबा आज भी बच्चों की पालना करता है, हर प्रकार से, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, कहीं भी रहो आप, बुद्धि की लाइन अपने आप क्लियर नहीं होती है। बुद्धि में संसार का चिंतन है, संसार की जिम्मेवारी है। उसको बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को भूलो। कैसे भूलेंगे? अपने आप भूल जाएगा क्या? शरीर पुराना, दर्द है, बीमारी है, समस्या है, परिवार है, तो उसका भी विधि चाहिए कि संसार में रहते 24 घंटा रहो। बाबा ने बीच व्यवस्था दिया 8 घंटा नींद करो, 8 घंटा संसार के कर्म करो, कम से कम आधा घंटा, एक घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी, तो उसकी व्यवस्था जो आपको कहता मैं भी क्या करता हूं, मुरली सुनी, एक मुरली के पॉइंट, सारी भी मुरली भी नहीं चाहिए, एक मुरली के पॉइंट याद रखो, लिख के रखो, चलते फिरते किसी का फोन आया, कोई मिले, आप हो करके बताओ, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। वो दुनिया का कोई ना कोई समाचार बताएंगे आपके मुख में। ब्राह्मण वो जिसके मुख पर सदा ज्ञान गंगा है। आप हो के किसी को देखते ही, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, किसी ने फोन किया, बात करो, एक एक घंटा बात करो, लेकिन बात करते करते, बात होने के बाद आपके जेब में लिख के रखो, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। हमारे मुख से सवेरे से रात तक एक मुरली के पॉइंट, रोज एक ही नहीं, आज अलग, सारे मुरली से अलग अलग मुरली के पॉइंट, रोज 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके आचरण में आएंगे। सिर्फ 100 दफा मुरली पढ़ो अंदर जाता नहीं है, पढ़ने से सुनने से नहीं, बहुत तेज बरसात आई बहके चली गई, एक एक बूंद अंदर जाता है। तब कहते हैं दुनिया में भगवान के एक बूंद के प्यासे, रोज एक ही शब्द ले लो और उसका अपने आप को सवेरे, दिन में, शाम को, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ शरीर रखने के लिए 3 दफा खाना खिलाते हो। आत्मा को भी हेल्दी माइंड, आत्मा को भी स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 3 दफा सवेरे नाश्ता करने बैठते हो, याद दिला आज बाबा ने ये कहा था, चिंतन भी नहीं चाहिए, दिन में खाना आते ही आज बाबा ने क्या कहा, लिख के रखो, पढ़ो, खाना खा लो, रात को 3 दफा आज की मुरली अपने आप को पढ़ा के देख लो, एक हफ्ता करो, 10 दिन करके देख लो, और कम से कम 2-3 दफा एक दूसरों को सुनाना, शेयर करना। बाबा ने आज का उच्च पद चाहते हो, ज्ञान दान करो, औरों को सुनाओ, ये करके देखना, 10 दिन करो, देखना क्रोध आपको अपने आप छोड़ के जाएगा, सिर दर्द होता है, आप कहो सिर दर्द जाओ जाएगा, दवाई लेनी पड़ती है, शरीर की बीमारी है। तो आत्मा की बीमारी को मिटाना चाहते हो, दुनिया में कहते हैं किसी को बेहोश हो जाता है तो संजीवनी बूटी सुंघाते हैं तो होश में आता है। तो ये मुरली संजीवनी बूटी है, सवेरे दिन में शाम को सारा दिन में बार बार कम से कम 3 दफा सुंघाओ, याद दिलाओ, होश में रहते हैं। हाँ कोई गलत कुछ गुस्सा कुछ दुख देता है, आप होश में हो, कभी भी मुझे मैं गुस्सा करना नहीं चाहता था, आ गया, अर्थात बेहोश था मैं, स्मृति में नहीं था। तो स्मृति को जागृत करने के लिए व्यवस्था चाहिए, ये चमत्कार नहीं, अपने आप होने वाला नहीं। तो मुझे लिख के रखना है, अपने आप को पढ़ाना है, औरों को याद दिलाना है, सदा नहीं 10 दिन आदत डालो। जैसे अभी देखो किसी को चाय नहीं पिया, सिर दर्द होता है, जन्मते ही चाय पीना सीख के नहीं, आदत डाली है। तो यहां भी आदत डालो, रोज मुझे 1 मुरली के पॉइंट लिखकर जेब में डालना है। अगर आज डाला नहीं, आपको अंदर ही अंदर खाएगा, और मुरली सुनते समय भी सारी मुरली में आपका ध्यान जाएगा कि नया पॉइंट सुनाना है, कल जो सुना था वही नहीं, नया चाहिए। तो मुरली पर भी पूरा अटेंशन जाता है, मुरली के अंदर रस आता है। नहीं तो अभी क्या हो गया, मुरली सुनी लिखी आपने, क्या फायदा आपको नहीं मुझे भी। अगर मुझे आज क्लास करने के लिए नहीं बताया तो मुझे मुरली सुनी मैंने लिखी भी है, क्या फायदा नहीं। सुनाना है, डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं, कुछ सुनाना है तो जरूर बुद्धि ग्रहण करती है, नहीं तो समझते हमारे पास है उसका यूज नहीं हो रहा है। तो यूज करो, आप होके आदत डालो, सवेरे से रात तक मुझे किसी न किसी को आज की मुरली के पॉइंट सुनाना है। अगर अपने को ब्राह्मण समझते हो, सो देवता बनना चाहते हो, ऐसे नहीं हम रोज सफेद कपड़े पहन के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं मुरली सुनते इसलिए ब्राह्मण बन गए, नहीं है ना। एक महावाक्य, दो भी नहीं चाहिए, सवेरे से रात तक मुझे दान करना चाहिए। क्यों? कि सत्संग से ही सत्गति होती है। अगर मेरे कर्मों में परिवर्तन चाहते हैं तो बुद्धि को याद है, अगर किसी कारण स्वभाव संस्कार के वश मैंने कोई गलत किया, अंदर ही अंदर बुद्धि आपको खाएंगी कि आज मैंने ये झूठ बोला, आज मैंने कर्मों में ये गलत किया, ये नहीं करना चाहता। बाबा ने आज मुरली में कहा था, मैंने उसको मुरली सुनाई थी, उसको पॉइंट सुनाया था, मैंने किया, आपको शांति से सोना नहीं देगा। उसको कहते हैं जब तक आपने गलती को महसूस नहीं किया तब तक परिवर्तन नहीं होता है। अभी गलती करने के बाद भी हमारे अंदर महसूस होता नहीं है, उसने ऐसे बोला इसलिए मैंने जोर से बोला, मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने ऐसे बोला इसलिए मैंने ऐसे बोला, दोषी वो मैं नहीं हूं। तो ये बुद्धि को महसूस होने के लिए मुरली के पॉइंट याद रखना, मुरली ज्ञान, तब कहते हैं सत्संग से सत्गति होती है। सुनने से नहीं, आके बैठने से नहीं, कुछ एक शब्द लेके जाना है अपने सवेरे से रात तक, उसको एक ही को बार बार कम से कम 3 अपने को पढ़ाओ तो याद रहता है। बुद्धि को याद है तो महसूस होता है मैं क्या कर रहा हूं, उस ज्ञान के अनुसार चल रहा हूं कि ज्ञान के विरुद्ध चल रहा हूं। हाँ परिस्थिति है, समस्या है, विघ्न है, तो मुझे क्या करना चाहिए। रोज बाबा मुरली में सुनाता है, बच्चे ऐसी परिस्थिति है ऐसे करो। आज बाबा ने स्लोगन में कहा कोई आपके ऊपर कीचड़ भी डाले तो क्या करना चाहिए, और थोड़ा कीचड़ डालना चाहिए तो बताओ क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए। हाँ आपको हीरा देना चाहिए, तो हीरा होगा तो देंगे ना, हीरा कहां से लेके आऊं, उन्होंने तो कीचड़ फेंका। हीरा मुरली लिख करके जेब में रखी है ना, तो मुरली का दान, हीरा कहां से ले जाएंगे, ये ज्ञान रतन दान करो। ज्ञान रतन अपने आप को तो यूज करो, दूसरों को छोड़ दो, उसको आपको याद रहेंगे बाबा ने आज कहा था, बच्चे ये कीचड़ फेंक रहा है, आपके पास हीरा है, आप हीरा दे दो, हीरे के प्रति सोचो, ज्ञान के प्रति सोचो, ये उसका कर्म है। मेरा धर्म कर्म क्या है, मैंने कभी कल्प 10 साल जन्म पहले किया होगा, अब वो मेरे ऊपर वापस कर रहा है, ये मुझे लेना है, मिटाना है। तो ये ज्ञान आपको रियलाइज कराएगा। अगर ज्ञान नहीं है तो जो कल करते थे वो आज भी कर रहे, तब बाबा को कहना पता है, हू बहु रिपीट हो रहा है ड्रामा। कल गुस्सा कर रहे थे, आज मुरली भी सुनी, ज्ञान भी सुना, योग भी किया, आज भी गुस्सा किया, तो क्या होगा 5000 साल के बाद? वही होगा। दवाई होते हुए भी दवाई नहीं लेंगे तो बीमारी ठीक होंगी क्या? दवाई लगानी है, अप्लाई करना है, ये दवाई सवेरे लेना है, ये शाम को लेना है। दवाई विधि पूर्वक लेंगे तो बीमारी मिटेंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा, ज्ञान और योग का प्रयोग अपने स्वभाव संस्कार पर करो। उसकी एक विधि बताया, पहला ज्ञान का प्रयोग करो। तो ज्ञान का प्रयोग कैसे करें? मुरली के पॉइंट याद रखो। हम मन चंचल है, किसी को देखते गलत विचार आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं, हाँ यही व्यक्ति था वो, इसने मुझे बहुत दुख दिया, हाँ दिया था, अभी क्या करना है? हाँ बाबा ने कहा था, उसने कीचड़ फेंका, मुझे हीरा देना चाहिए। बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करो, इसको ऐसी सद्बुद्धि दे दो दोबारा ऐसा कर्म न करे। ये ज्ञान का प्रयोग है। मुरली क्यों? ये सुनने के लिए नहीं है, ये सुनकर आचरण में लाने के लिए। और बहुत नीचे एक बस 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट मेरे आचरण में आता है, तो धीरे धीरे परिवर्तन हो गए, एकदम देवता नहीं बनेंगे। तो इसके लिए अव्यक्त रूप से बाबा आज वतन से भी कैसे बच्चों की पालना करता है, कैसे सिखाता है। आपको और एक बताओ, ऐसे बहुत है प्रैक्टिकल। देखो एक व्यक्ति डॉक्टर अफ्रीका में हर रविवार को महीने में एक दफा सत्यनारायण की पूजा करता था। अफ्रीका में उसने प्रदर्शनी लगी थी तो वो ज्ञान सुना तो बहुत अच्छा लगा ज्ञान। फिर वहां के बहन जी को कहा, बहन जी मुझे ज्ञान तो समझ में आया, योग लगाना सिखाओ। तो उन्होंने कहा, वो तो आपको बाबा सिखाएगा योग करने। हो गया 2-3 दिन के बाद फिर आया, बहन जी वो योग सिखाए ने, बाबा से मिलाओ मुझको। अरे वो बाबा इधर नहीं, वो तो भारत में है, अभी क्या करें। फिर दूसरे दिन आया, बहन जी कितना भी खर्चा हो मुझे भारत में भेजो। नहीं आप जा नहीं सकते हो, 2 साल रोज ज्ञान योग करो तब आपको भेजेंगे। तो फिर आया, बहन जी कितना भी खर्चा हो मुझे बाबा के पास भेजो, मुझे योग सीखना है, रोज आके एक ही। बहन जी को भी लगा, अरे इसके लिए क्या करे, कहता अभी कोई जाने वाला नहीं, आप 1 साल इंतजार करो, बाद में भेजेंगे। नहीं कुछ भी हो मुझे भेजो, मैं अकेले जाऊंगा। 3 दिन के लिए बहन जी ने कहा जाओ, 3 दिन के लिए आया अकेला ही, और कहा वहां बाबा का कमरा है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आपको योग सिखाएगा। वो आया, स्नान भी करके बाबा के कमरे में बैठा, फिर देखा किसी ने व्यक्ति ने, अरे सवेरे बैठा था अभी तक इधर ही बैठा है। भाई जी आपने खाना खाया? खाना खा लो। रात को 11 बज गया वही बैठा है। फिर कह रहे सोने जाओ अभी बंद होता है। 3 दिन बाबा आपके बहन जी ने मुझे भेजा है, आप राजयोग सिखाएगा। और 3 दिन हो गए, पहले दिन चला गया, दूसरे दिन भी गया, तीसरे दिन शाम को 5 बजे कल सवेरे उसको जाना है, तो कहना बाबा आपने तो मुझे फंसाया, बहन जी ने मुझे फंसाया। बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे पति वाइफ थी उनकी, वो भी क्या कहेंगी, डॉक्टर साहब होते हुए दिमाग नहीं है, भगवान ऐसे राजयोग सिखाएगा क्या? तो बोलेंगे क्या बताओ, कैसे मुंह दिखाओ। तो बाबा से बात करते रहे। 5 बजे हम सोए थे कि किसी का क्लास होने वाला था, फॉरेनर्स 8-10 लोग थे, तो मुझे कहा कि आपको आज क्लास करना। हमने कहा अभी नहीं, मैं सोया, उठ करके स्नान करके आएगा, 1 घंटा लगेगा, कल करूंगा। नहीं कभी भी आप, लेकिन आपको ही करना है। आया, 5-8-10 विदेशी थे, ऐसे पूछा कि कहां से आए हो। तो फिर कहा भगवान को याद क्यों करते हो, किसी ने कुछ नहीं बोला, चुप नए थे बिल्कुल। तो मैंने फिर याद कैसे करना है, योग कैसे करने सुनाया, सुनाते सुनाते देखा वो आगे आगे बैठा था, रोने लग गया। हमने कहा भाई जी आप बीमार हो? नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। रो रहे हो क्यों, क्या हो गया? नहीं भगवान सुनता है, भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है, देर होती है। 3 दिन मुझे लग गए, मुझे लग रहा कल सवेरे जाना है, अंत में वो आता है। परीक्षा लेता है मेरी। तीन दिन मुझे लग रहा था कल सवेरे जा मैं खाली हाथ जाऊंगा, और गया, सारे परिवार को लेके आया आज भी कि भगवान, उसने कहा जाके जहां भगवान आता है मुझे वहां रहना है, आप आओ या नहीं आओ। दो बच्चे लड़की है, एक लड़का है, सारे परिवार इधर, डॉक्टर सारा छोड़ करके आ गया। तो भगवान सुनता है, आज भी देखता है, पालना करता है। ऐसे नहीं आप कहेंगे अभी सभी का करता होगा, सभी का सुनना चाहिए, वो भी बताता हूं मैं। अभी मैंने एक दादी का सुना, शुरू में थी, अभी भी है, शुरू में बाबा की इतनी सेवा की, इतनी सहन करके बाबा के पास आई यज्ञ में, मुझे रहना ही है। और उनके पिताजी ने, मैंने सुना उनके पिताजी इंजीनियर थे, जो मधुबन में हिस्ट्री हॉल है, हिस्ट्री हॉल का डिजाइन जो किया था वो उनके पिताजी ने किया था, वो इंजीनियर थे दिल्ली में, और इंजीनियर यूनिवर्सिटी बना रहे थे एक। तो बाबा ने मुरली में एक ये निकाला था संदेश कि जो भी इंजीनियर बच्चा हो, खाली हो तो हमको चाहिए सेवा के लिए। तो लड़की ने पिताजी को कहा, पिताजी आप यहां दुनिया के यूनिवर्सिटी बनाते हो, भगवान यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आया है, उनको सेवा चाहिए, जाओ। तो चार साल मधुबन में रहकर छोटे है हिस्ट्री हॉल जो मधुबन बनाया उसकी प्लानिंग किया, बनवाया। तो वो कह रही थी कि एक दिन उनको दोनों पांव बहुत दर्द कर रहे थे, उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते थे, अभी साकार की बात नहीं अभी। तो फिर क्या करे, तो उनका भाई दिल्ली में है, उनको पता चलो, उन्होंने कहा बहन जी आप दिल्ली में बहुत अच्छे डॉक्टर है, मैं ठीक करता हूं। नहीं नहीं बाबा करेगा, वो उसने माना नहीं, लेके गया। और गुलजार दादी के तर में बाबा आया, एक भाई आया था सेंटर से, अरे वो बहन कहां है, बाबा उसको बहुत दर्द है पाव का, चल नहीं सकते हैं। उनका भाई दिल्ली में लेके गया, ठीक है। बाबा ने फल की भोग के अंदर फल में आम रखा था, एक आम निकाल के उसको दिया, उसको पहुंचाना, उनको जाके दिल्ली में दिया। उन्होंने कहा बाबा ने टोली भेजी है, सबको काट के खिलाओ। तब उन्होंने कहा बाबा ने आपको देने के लिए कहा, जैसे शाम को आम काट के खाया दूसरे दिन दौड़ने लगे, चलने लगी। आप पूछेंगे साकार में बाबा मदद करता होगा, आज भी जिन्होंने यज्ञ की स्थापना में हड्डियां दी है, दुनिया में गायन है दधीजी ऋषि माफिक, हड्डी हड्डी यज्ञ में दिया, आप उनकी एक एक कहानी सुनेंगे, एक पैसा भी नहीं खाने के लिए, कैसे रहकर। बाबा ने कहा बच्ची उधर जाके सेवा करो, कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा माताजी सवेरे बैठे हो, तो कैसे बाबा सेवा कराता है, भगवान के पर विश्वास, ऐसे नहीं सब कुछ मिला तब सेवा किया, नहीं कुछ भी नहीं। तो ऐसे बच्चों को आज अव्यक्त बाबा भी ऊपर से देखता है, बच्चों की संभाल करनी है, वादा किया है निभाऊंगा। नहीं तो कहेंगे अभी बाबा कहां, अभी कौन पूछता है, बाबा नहीं है, नहीं बाबा के ऊपर से हर एक बच्चों पर नजर है, आज भी बच्चों का आवाज सुनता है। ये अभी अभी कि बीमार होने के बाद भी बाबा के उनको ये दे दो, साकार में सन्मुख है तो कहेंगे, अभी भी ऊपर से ही बच्चों के ऊपर न। तब बाबा ने कहा बच्चों के साथ मैं अंत तक हूं, जिन्होंने इस यज्ञ की स्थापना में हड्डी हड्डी दिया है, जो अपना तन मन धन स्वास्थ्य समय संकल्प त्याग किया हुआ है, भगवान भी उनका ऋणी है, उनका ऋणी है, जिन्होंने भगवान को मदद किया और किसी ने नहीं किया। तब बाबा ने कहा मुझे कौन चाहिए, वो बच्चे चाहिए जो भारत को, विश्व को, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में मदद करे। उसके पास अपना तन नहीं है, वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है, बच्चों के बगैर बाप एक कदम भी नहीं कर सकता है, सर्वज्ञ होते हुए भी कर सकता है। श्री कृष्ण एक ही स्वदर्शन चक्र छोड़ दे सबको खत्म कर सकता है, नहीं। क्यों अर्जुन के पीछे इतना पड़ा, क्यों अर्जुन को इतना मदद करना, बार बार इतना समझाना पड़ा, क्यों? ये श्रेय उसको देना है, नहीं तो शिव बाबा जो चाहे कर सकता है। तथास्तु करके आप कहते हो बाबा दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो, शुभ भावना रखो, नहीं। तो कर्म। तो अर्जुन के पीछे कितना, क्यों इतना ज्ञान सुनाया, क्यों उसको बार बार एक किया कि कर्म उससे कराना है। वो श्रेय तीनों, उन्होंने कहा मुझे तीनों लोगों की आपके राजाई नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांग के जीऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। तो भी भगवान देना चाहता है। तो आज भी तो बच्चों के लिए बाप कभी कहते मां देखो जब भी खाना बनाती है कभी नहीं कहते मेरे लिए खाना बनाया, बच्चों के लिए, पति के लिए और उस इनके लिए बनाया। तो भगवान भी अपने लिए नहीं, बच्चों को सुख देना चाहता है। तब कहा भगवान को सिर्फ भारत में ही मां पिता कहते हैं, सारा विश्व भगवान को गॉड फादर कहते हैं, बाप है वो, मां नहीं है। सिर्फ भारत में ही भगवान को मां बाप कहते हैं, मां पालना करती है, हर प्रकार की संभाल करती, खिलाती है, पिलाती है, देखती है, दर्द में हर में दिन रात अपना नींद का भी त्याग करके, हर प्रकार से त्याग करके बच्चों की सेवा करता है। तो आज भी अव्यक्त होते, ऐसे नहीं हजारों उदाहरण है। ये किसके लिए, आत्मविश्वास चाहिए। कभी कभी होता है किसी ने कहने के बाद, किसने देखा अब ये सब जीवित है, जो भी आपको एग्जाम्पल दिया सब जीवित है, अभी देखा मैंने कहा अभी गुजरात में है जीवित, क्योंकि मनुष्य के नेचर अभी बन गया, देखा जाता है, साइंस पर विश्वास है क्योंकि प्रैक्टिकल प्रूफ है। अगर आपको कहानी बताओ, कहानी हजारों है, एक राजा था, एक मोर नाचता था जंगल में, किसने देखा। अगर आप में से कोई चाहता है, प्रूफ चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है जीवन में ऐसा मुझे भी ऐसा करना चाहिए, कर सकता है ना। इतना नहीं, मैं आपको अभी तक मैंने कभी सुनाया नहीं, और एक कुमार आज जीवित है, एक कुमार ने बाबा को खाना कैसे खिलाया, मैं कम से कम 25 साल से उसको जानता हूं, कभी नहीं सुनाया। अब भी एक ऐसा प्रसंग आया एक महीने पहले, उसने अपना अनुभव सुनाया कि मैं अकेला रहता था कि बाबा कैसे असाकार में आके काम करता है। आपने सुना भी, पहले भी मैंने सुनाया, एक बहन थी लिखना नहीं जानती थी, बाबा आ करके बच्चे को कहा बच्चे पेन पेंसिल लेके बैठना मैं सिखाता हूं, बाबा ने लिखना सीखा, स्कूल में नहीं गई, कहीं नहीं गई। तो बाबा हर कुछ काम कर सकता, लेकिन योग्य पात्र चाहिए। नहीं तो 5 पांडव थे कि अर्जुन के पीछे क्यों, पात्रता चाहिए। कुछ भी अच्छी चीज देने के लिए पात्र अगर ठीक नहीं तो क्या होगा, योग्य पात्र चाहिए। तो अपने को योग्य पात्र बनाना जरूरी है। तो उसके लिए अभी भोग लगने वाला है 1 बजे तक का, और 5-10 मिनट है, अभी सुना बहुत, करना भी चाहिए ना कुछ, हाँ तो कुछ करना भी चाहते हो तो आराम से बैठ के 5 मिनट हम योग करें। कि संगठित रूप उसको कहते हैं शांति की शक्ति। जैसे मकान बनाते हैं, कुछ करते हैं, हवन करते हैं, हवन में क्या होता है, सब प्रकार के तेल घी डालते हैं, उसके वाइब्रेशंस धुएं से सब परिवर्तन होता है। तो आप और हम सब मिल करके अच्छे तरह से योग करेंगे तो अभी भोग लगेगा, तो भोग आने से पहले शांति से बैठ करके तो योग करेंगे। देखो सभी, आशा दीदी भी आ गई, देखो पुष्पा बहन भी आ गई, हाँ सब बैठ करके 5 मिनट अच्छी तरह से योग करेंगे। क्योंकि गुलजार दादी भी दिल्ली में है, बॉम्बे में है, तो वहां से उनको भी इधर से वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो दादी भी जल्दी ठीक होके आ सकती है, तो सब भी मिल करके करें। तो अच्छी तरह से आराम से बैठ के 5 मिनट बाबा को याद करो, याद करने की विधि बताया, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से कैसे बात करनी है। तो आप में अपने को, अपने आप को जागृत करो। अगर शरीर की स्मृति में है तो आपके विचार ऊपर नहीं जाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा से बात करो। रोज बाबा मुरली में कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसे हम 5 मिनट बैठेंगे, अभी सफेद लाइट रहने दो, नहीं तो लाल लाइट हो तो दिखाई नहीं देता है।
तुझसे है।